महान हिमालय राज्य की राजधानी के नागरिकों, शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए? सभी तो अशांत हैं, सभी तो बेचैन हैं, सभी दुखियारे हैं। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, आज एक बात का दुख तो कल किसी दूसरी बात का दुख। सब दुखियारे हैं, धनी हो या निर्धन हो, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, पुरुष हों या नारी हों, सभी अशांत हैं, सभी बेचैन हैं। अपने यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, सद्गुरुओं ने, अरहंतों ने, बुद्धों ने इसी बात की खोज की कि प्राणी अपने दुखों से कैसे बाहर निकल सके, मानव कैसे सुख शांति का जीवन जी सके। एक ही बात सबके समझ में आई और वो ये कि धर्म धारण करके ही कोई शांति का जीवन जी सकता है, बिना धर्म के शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है। परंतु धर्म कैसे धारण करें? हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि सदियां बीतती चली गई, बहुत समय बीत जाने पर भाषा बदल जाती है, भाषा के शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो ये धर्म शब्द की भी यही हालत हुई। आज हमारे दुर्भाग्य से धर्म शब्द अपना अर्थ खो बैठा, अर्थ का अनर्थ हो गया। जब कोई यही नहीं समझेगा कि धर्म क्या है तो उसे कैसे धारण करेगा? आज हमारे लिए धर्म और संप्रदाय दोनों एक हो गए, दोनों पर्यायवाची हो गए, दोनों का अर्थ एक ही हो गया, जबकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। बहुत सी बातों में तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत हैं, बहुत सी बातों में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो समझें, पुरातन युग में धर्म का सही अर्थ क्या था और आज वो अर्थ खोकर हमने क्या खो दिया? आज तो धर्म कहते ही सुनने वाले के मन में एक प्रश्न उठता है, कौन सा धर्म? ये व्यक्ति कौन से धर्म की बात करेगा? हिंदू धर्म की कि बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि ईसाई धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि सिख धर्म की कि पारसी धर्म की कि यहूदी धर्म की? कौन से धर्म की बात करेगा? दुर्भाग्य की बात हुई ना। मानो जब तक धर्म के साथ ये विशेषण नहीं लगते, हिंदू के नाम का विशेषण कि बौद्ध के नाम का विशेषण कि जैन के नाम का विशेषण, ऐसे विशेषण उसके साथ नहीं लगते तो मानो धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अरे जिसका इतना महान अस्तित्व है, जो इतना कल्याणकारी है, उसका अस्तित्व ही भुला दिया। धर्म अपने आप में बहुत महान है, उसको इन विशेषणों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन विशेषणों के कारण धर्म की महानता लुप्त हो जाती है। धर्म तो असीम होता है, धर्म सार्वजनीन होता है, सर्वव्यापी होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है। तो धर्म धर्म होता है। जैसे ही हमने धर्म को हिंदू धर्म कह दिया तो वो जो असीम था वो ससीम हो गया। जैसे ही इसे बौद्ध धर्म कह दिया कि जैन धर्म कह दिया कि ईसाई या मुस्लिम या सिख या पारसी धर्म कह दिया, वैसे ही जो असीम था वो ससीम हो गया, जो सार्वजनीन था वो अल्पजनीन हो गया, जो सार्वदेशिक था वो अल्पदेशिक हो गया, जो सार्वकालिक था वो अल्पकालिक हो गया। हिंदू धर्म तो केवल हिंदुओं का होगा ना, सबका तो नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म तो केवल बौद्धों का होगा ना, सबका तो नहीं होता। ऐसे ही जैन धर्म जैनियों का, मुस्लिम धर्म मुस्लिमों का, ईसाई धर्म ईसाइयों का, सिख धर्म सिखों का, पारसी धर्म पारसियों का। तो असीम था उसे ससीम कर दिया, जो सार्वजनीन था उसे अल्पजनीन कर दिया। और सबसे बड़ी हानि ये हुई कि जैसे ही धर्म को हिंदू धर्म कहा, हिंदू प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया, धर्म अंधेरे में चला गया, हिंदू प्रमुख हो गया। जैसे ही बौद्ध धर्म कहा, बौद्ध प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया, अंधेरे में चला गया। जैन धर्म कहा तो जैन प्रमुख हो गया, मुस्लिम धर्म कहा मुस्लिम प्रमुख हो गया, ईसाई धर्म कहा ईसाई प्रमुख हो गया, सिख धर्म कहा सिख प्रमुख हो गया। धर्म कहाँ गया? धर्म की क्या हालत बना ली? भाई धर्म कभी हिंदू हो नहीं सकता, धर्म कभी बौद्ध हो नहीं सकता, जैन हो नहीं सकता, ईसाई मुस्लिम सिख पारसी यहूदी कभी नहीं हो सकता। हम इन्हें मनुष्यों का एक समाज कहें, एक समूह कहें, एक संगठन कहें, एक सोसाइटी कहें, एक संप्रदाय कहें, तो सही तरह कहना हो गया। धर्म न कहें, किसी एक प्रकार के रहन सहन वाले लोग, किसी एक प्रकार के खान पान वाले लोग, किसी एक प्रकार की विचारधारा के लोग, किसी एक प्रकार के व्रत उपवास करने वाले लोग, किसी एक प्रकार के पर्व त्योहार मनाने वाले लोग, किसी एक प्रकार के पूजा पाठ करने वाले लोग, किसी एक प्रकार की दार्शनिक मान्यता को मानने वाले लोग, ऐसे लोगों के अलग अलग समूह, अलग अलग समूह, अलग अलग समूह, पर इन बातों का धर्म से कोई लेन देन नहीं। धर्म को उसके सही स्वरूप में जब समझने लगेंगे तो इस भ्रांति के बाहर आ जाएंगे। अन्यथा तो इस समाज की परंपरा के जो कर्मकांड हैं उन्हें पूरा करके कोई आदमी समझ लेता है कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूं। उस समाज की जो कर्म कांड है उनको पूरा करके एक आदमी समझ लेता है मैं बड़ा धर्मिष्ठ हूं, जबकि हो सकता है उसमें धर्म का नामो निशान नहीं हो, रंच मात्र भी धर्म नहीं हो, फिर भी अपने आप को धार्मिक समझता है, धर्मिष्ठ समझता है। बेचारा भ्रांति में है, उलझन में है। ऐसा व्यक्ति सही माने में धर्म क्यों धारण करेगा, इसी नशे में रहेगा। मैं तो बहुत धार्मिक हूँ क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर बौद्ध हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर ईसाई हूँ, सिख हूँ, यहूदी हूँ, पारसी हूँ। मुझे ब्रह्म देश से इस ओर आए हुए 25 वर्ष हो गए। विपश्यना के शिविरों में भी और शिविरों के बाहर भी लोगों से मिलता हूँ, तो ऐसे कहने वाले तो बहुत मिलते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर बौद्ध हूँ, इत्यादि इत्यादि। पर आज तक कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि मैं कट्टर धर्मिष्ठ हूँ, कि मैं कट्टर धर्मवान हूँ। कैसे कोई कहे, समझना ही भूल गए धर्म किसको कहते हैं। तो आओ आज की इस धर्म सभा में थोड़ा सा समय धर्म शब्द का जो इतिहास है उस पर एक नज़र डालते हुए थोड़ा सा समय लगाएं, ताकि समझें कि अपने यहाँ पुराने ज़माने में, पुरातन काल में धर्म किसको कहते थे। एक समय था धर्म का अर्थ बड़ा व्यापक, और वो सही अर्थ बड़ा व्यापक। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। आँख का विषय है रूप, आकृति, रंग, रोशनी। कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है रस, त्वचा का विषय है कोई स्पर्शव्य पदार्थ जो उसे छूता है। ये 5 मोटी मोटी इंद्रियां, इसके अतिरिक्त एक और इंद्री है जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़ी बलवान है, वो मन की इंद्री है। ये 5 इंद्रियां जब काम नहीं करती तो मन की इंद्री अपना काम करना शुरू करती है। आंखों से जो देखा था उसका चिंतन मनन चलता है, आंखों से जो देखना चाहता है उसका चिंतन मनन चलता है, कान से जो कभी सुना था उसका चिंतन मनन चलता है, कान से जो सुनना चाहता है उसका चिंतन मनन चलता है, नाक से जो कभी सूंघा था उसका चिंतन मनन चलता है, नाक से जो सूंघना चाहता है उसका चिंतन मनन चलता है, जीभ से कभी कुछ चखा था उसका चिंतन मनन चलता है, जीभ से जो चखना चाहता है उसका चिंतन मनन चलता है, काया से जो कभी स्पर्श हुआ था उसका चिंतन मनन चलता है, काया से ऐसा स्पर्श होना चाहिए इसका चिंतन मनन चलता है। ये मन की इंद्री अपना काम करती है। मन की इंद्री उसके विषय को पुराने समय में उसे धर्म कहते थे। धारे तेति धम्मो, जो धारण करे वो धर्म। माने मेरे चित्त ने इस समय क्या धारण किया है, मेरे चित्त ने इस समय जो धारण किया है वो इस क्षण की सच्चाई है, वो इस क्षण का मेरे चित्त का धर्म है। अनेक प्रकार की चित्त वृत्तियां, जो लोग अपने भीतर लोकीय और लोकोत्तर सारी सच्चाइयों को अनुभूति के स्तर पर जान गए। उन्होंने देखा कि कोई 52 प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं। इस समय ये चित्तवृत्ति हमारे मन ने धारण की है, इस समय ये चित्तवृत्ति, इस समय ये चित्तवृत्ति जो धारण की वही धर्म, जो धारे सो धर्म। चित्तवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत कुशल होती हैं, हमारे लिए बड़ी कल्याणकारिणी होती है, औरों के लिए भी कल्याणकारिणी होती हैं। चित्तवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जो बड़ी अमंगलकारिणी होती है, हमारे लिए भी हानिकारक होती है, औरों के लिए भी हानिकारक होती हैं। सब प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं। तो उस जमाने में सभी चित्तवृत्तियों को धर्म कहते थे। ऐसी चित्तवृत्ति जिसके धारण करने में मेरा कुशल समाया हुआ है वह कुशल धर्म कहलाता था। ऐसी चित्तवृत्ति जिसके धारण करने में मेरा अकुशल समाया हुआ है वो अकुशल धर्म कहलाता था। धर्म दोनों ही, कुशल धर्म अकुशल धर्म। आज की भाषा में कोई आदमी सोचे भाई कुशल धर्म तो समझ में आया, जो अकुशल है वो धर्म कैसे हुआ, ये पुरानी बात। उन दिनों धर्म सारी चित्तवृत्तियों को कहते थे कुशल धर्म अकुशल धर्म। इसी प्रकार दो शब्द चलते थे, शुक्ल धर्म कृष्ण धर्म। शुक्ल धर्म क्या? वो चित्तवृत्ति जिसके धारण करने से हमारा चित्त उजला हो जाए, सफेद हो जाए, वो शुक्ल धर्म। वो चित्तवृत्ति जिसके धारण करने से हमारा मन मैला हो जाए, काला हो जाए, वो उन दिनों की भाषा में कहलाता था कृष्ण धर्म। ठीक इसी प्रकार पुण्य धर्म पाप धर्म, जिस चित्तवृत्ति के धारण करने से हमारा चित्त पुनीत होता है, निर्मल होता है, वो पुण्य धर्म। जिस चित्तवृत्ति के धारण करने से हमारा मन कलुषित हो जाता है, क्लेशों से भर जाता है, वो पाप धर्म। इसी तरह दो शब्द और चलते थे पुरानी भाषा में, आर्य धर्म अनार्य धर्म। इतने लंबे अरसे के बीत जाने के बाद आज तो आर्य शब्द अपना पुराना अर्थ खो बैठा। आज तो आर्य एक जाति विशेष को कहते हैं। ऐसी जाति का व्यक्ति जो गोरा चिट्टा हो, बड़ी बड़ी आँखें हो, लंबा नाक हो, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता है, आर्य जाति का है। उन दिनों की भाषा में आर्य शब्द का ये अर्थ नहीं था। जो व्यक्ति कुशल चित्त धारण करते करते, शुक्ल धर्म धारण करते करते, अपने मन को निर्मल बनाते 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 संत हो गया, सज्जन हो गया, सतपुरुष हो गया, वो आर्य हो गया, शुभेच्छु हो गया। अब उसकी सारी इच्छाएं शुभ ही शुभ, अपना भी मंगल चाहेगा, औरों का भी मंगल चाहेगा, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता था। और जिसकी सारी इच्छाएं मैली ही मैली, अपना भी अमंगल करे, औरों का भी अमंगल करे, ऐसा व्यक्ति मलेच्छ कहलाता था। उसकी इच्छाएं मैली है, मलेच्छ कहलाता था, अनार्य कहलाता था। तो आर्य धर्म माने वो चित्तवृत्तियां जिन्हें धारण करके हमारा चित्त निर्मल बन जाए, संत बन जाए, वो आर्य धर्म कहलाया। वो चित्तवृत्तियां जिन्हें धारण करके हमारा चित्त मैला हो जाए, तुष्ट हो जाए वो अनार्य कहलाया। तो आर्य धर्म अनार्य धर्म, धर्म का ये प्रयोग, धर्म शब्द का ये प्रयोग चला होगा सदियों तक, हम नहीं जानते कितने दिनों तक चला। फिर धीरे धीरे एक अवस्था आई कि वो चित्त वृत्तियाँ जिनके धारण करने से हमारा मंगल होता है, कल्याण होता है, औरों का भी मंगल होता है, कल्याण होता है, हमारा चित्त पुनीत होता है, पावन होता है, निर्मल होता है, उसे धर्म कहने लगे। और जो जो चित्त वृत्तियाँ हमारे लिए अमंगल का कारण बनती है, हमारे अकल्याण का कारण बनती है, हमारे लिए दुखों का कारण बनती है, हमारे चित्त को मैला करती है, उन्हें अधर्म कहा। तो दो विभाजन हुए, धर्म अधर्म। धीरे धीरे हमारे यहाँ के धर्म गुरुओं ने समझाना शुरू किया कि जो जो चित्त वृत्तियाँ तुम्हारे मन को निर्मल करती है, तुम्हारा कुशल करती है, तुम्हारा मंगल करती है, उसे तुम्हें धारण करना चाहिए। और जो जो चित्त वृत्तियाँ तुम्हारे मन को मैला करती है, तुम्हारा अमंगल करती है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो समझाया कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है कि चित्त में ऐसी चित्त वृत्तियाँ धारण करो जो तुम्हारा भी मंगल करे, औरों का भी मंगल करे। तो धर्म का एक अर्थ हुआ कर्तव्य। ये मेरा धर्म है, माने ये मेरा कर्तव्य है। समय बीतते 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 धर्म का ये शब्द, ये अर्थ समाज में खूब फैला। ये मेरा कर्तव्य है तो ये मेरा धर्म है। क्या कर्तव्य है? जो अच्छी चित्त वृत्तियां हैं उनको धारण करूं, ये मेरा धर्म है। जो बुरी चित्त वृत्तियां हैं उनसे दूर रहूं, उन्हें दूर रखूं, यह मेरा धर्म है। ये व्याख्या चली, बड़ी अच्छी व्याख्या चली। धर्म शब्द के ये अर्थ इसलिए नहीं मान लिए गए कि ये किसी दार्शनिक मान्यता के अनुकूल हैं, इसलिए नहीं मान लिए गए कि ये किसी सांप्रदायिक मान्यता के अनुकूल हैं। ये अर्थ इसलिए माने गए कि ये सही अर्थ हैं और लोगों ने अपने अनुभव द्वारा इसे जाना है। कुदरत का नियम है कि जब जब मैं अपने मन में अकुशल वृत्तियां धारण करता हूँ, मैली चित्त वृत्तियां धारण करता हूँ, तो जैसे ही मेरा मन मैला होता है वैसे ही कुदरत मुझे दंड देने लगती है, प्रकृति मुझे दंड देने लगती है, या कोई यूँ कहना चाहे तो यूँ कहे कि परमात्मा हमें दंड देने लगता है और हम व्याकुल हो जाते हैं। कोई आदमी क्रोध जगा के देखे, क्रोध भी जगाए और भीतर बड़ी शांति मालूम हो, बड़ा सुख मालूम हो, ऐसा नहीं होता ना भाई। कोई जगाए, क्रोध जगाते ही व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार कोई सा विकार जगा ले, द्वेष जगा ले, दुर्भावना जगा ले, दौर्मनुष्यता जगा ले, राग जगा ले, वासना जगा ले, अहंकार जगा ले, ईर्ष्या जगा ले, मात्सर्य जगा ले, कोई विकार जगा ले, विकार जागा कि व्याकुल हुआ, विकार जागा कि व्याकुल हुआ। तो कुदरत नहीं चाहती कि हम इस प्रकार का विकार जगाएं। जगाएंगे तो तत्काल दंड मिलेगा, तत्काल दंड मिलेगा, देर नहीं लगेगी। और इसी प्रकार कुदरत का एक नियम और बहुत स्पष्ट मालूम होने लगा। हमारे यहाँ जिनको ऋषि कहते थे, क्यों ऋषि कहते थे, कि वो ऋत की ऐषणा करते थे, गवेषणा करते थे, पर्यवेषणा करते थे। ऋत माने विश्व का विधान, ऋत माने कुदरत का कानून। ऋत माने निसर्ग के नियम अंतर्मुखी होकर के वो सारे विश्व के नियमों को अनुभूतियों के स्तर पर जानते थे तो ऋषि कहलाते थे। उन्होंने अंतर्मुखी होकर इस बात को जान लिया कि जब जब अपने मन में हम अकुशल चित्त वृत्तियां जगाते हैं तब तब हमें दंड मिलता है और तत्काल दंड मिलता है। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जब जब अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेते हैं, चित्त को निर्विकार कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, तो एक और कुदरत का कानून है, एक और विश्व का विधान है कि जैसे ही चित्त निर्मल होगा अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से भर जाएगा, अनंत उपेक्षा यानी समता भाव से भर जाएगा। जैसे ही मन में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस तरह के सद्गुण जागने लगे कि कुदरत ने पुरस्कार देना शुरू कर दिया, हमें इनाम देना शुरू कर दिया, बड़ी शांति मालूम होगी, भीतर बड़ा सुख मालूम होगा। जब जब हमारा चित्त विकारों से निर्मल होता है तब तब बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ा सुख मालूम होता है, हमें पुरस्कार मिलने लगा। और जब जब हम अपने मन को मैला करते हैं हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, हमें दंड मिलने लगा, मानो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हमारे देश के महापुरुषों ने ये बात ढूंढ निकाली तो कहा ये तेरा कर्तव्य है, तेरे भले के लिए तेरा कर्तव्य है कि अपने चित्त में विकार मत जगने दे, ये तेरा कर्तव्य है। ये तेरा कर्तव्य है कि अपने मन को विकारों से मुक्त रख, निर्मल रख, ये तेरा कर्तव्य है, ये धर्म है, इसे धारण कर, बड़ा कल्याण होगा और अभी कल्याण होगा। कोई अच्छा राज्य होता है और उस राज्य के कानून कायदे होते हैं, वो सारे कानून कायदे सब पर लागू होते हैं। अच्छा राज्य होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये कानून अमुक आदमियों पर लागू होगा, अमुक आदमियों पर नहीं लागू होगा, सब पर एक जैसा लागू होगा तो समझो अच्छा राज्य है ये। ऐसे ही ये प्रकृति का कानून, निसर्ग का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हमने कानून तोड़ा है, मन में विकार जगाए हैं, हमको तत्काल दंड मिलेगा। किसी राज्य का कानून तोड़ दे तो हो सकता है कि वो दंड से बच भी जाए, हो सकता है कोई अपराध करते हुए उसे पकड़ न सके, हो सकता है पकड़ा भी जाए तो कोई ऐसे सरकारी अधिकारी हों जो मुंह फेर लें, उस ओर नहीं देखें, पक्षपात हो गया। नहीं भी पक्षपात हुआ, दंड भी मिला तो चलते रहे केस इस कोर्ट से उस कोर्ट में, इस कोर्ट से उस कोर्ट में, बरसों लगे उसके बाद दंड मिला। देखें ये जो कुदरत का कानून है इसमें भूल नहीं होती, जरा सी भी भूल नहीं होती, इसमें देर नहीं लगती, जरा सी भी देर नहीं लगती। जैसे ही मन को विकारों से विकृत किया तुरंत दंड मिलेगा, उसी समय दंड मिलेगा, देर नहीं होगी, पक्षपात भी नहीं होगा। इसीलिए धर्म की एक और व्याख्या अपने यहां चली, बड़ी सुंदर व्याख्या, बड़ी सही व्याख्या, अत्तनो स्वभावं धारेतीति धम्मो, अत्तनो लक्षणं धारेतीति धम्मो। जो अपना स्वभाव धारण करता है, जो अपना लक्षण धारण करता है वो धर्म है। क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है? चित्त ने एक चित्त वृत्ति धारण की इसलिए वो धर्म कहलाया, ये एक व्याख्या। चित्त ने जो चित्त वृत्ति धारण करी उसका क्या स्वभाव, माने मैंने क्रोध धारण किया, द्वेष धारण किया, दुर्भावना धारण की, उसका क्या स्वभाव? ऐसी चित्तवृत्ति का स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना, ये उसका स्वभाव है। मैंने मैत्री धारण की, करुणा धारण की, स्नेह धारण किया, सद्भावना धारण की, इन चित्तवृत्तियों का क्या स्वभाव है? इन चित्तवृत्तियों का स्वभाव है शांत होना और शांत करना। तो इन चित्तवृत्तियों का ये धर्म है, इन चित्तवृत्तियों का ये धर्म है, ये इस तरह की व्याख्या बड़ी सही व्याख्या थी, वो चलने लगी समाज में, खूब चली। आज ये सारी व्याख्याएं हम भूल गए, कहीं कहीं दूर की कोई गूंज सुनाई दे जाती है हमको, इस पुरानी व्याख्या की कोई गूंज सुनाई दे जाती है, जबकि ये मानते थे कि धर्म का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, क्या प्रकृति है, क्या स्वभाव है। अभी भी कभी कभी इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग हो जाता है, जब हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, उसका स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। अगर वो जलती नहीं और वो जलाती नहीं तो अग्नि नहीं हो सकती, और चाहे जो कुछ हो। ऐसे ही आज भी कहते हैं बर्फ का स्वभाव है शीतल होना, शीतल करना। अगर वो शीतल होती नहीं, शीतल करती नहीं तो और कुछ हो सकती है, बर्फ नहीं हो सकती। ऐसे ही कहते हैं, आज भी कहते हैं सूरज का धर्म है उष्णता देना और प्रकाश देना, ये उसका धर्म है। अगर वो उष्णता नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है, सूरज नहीं है, कुछ और होगा। चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना और प्रकाश देना। अगर वो शीतलता नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है, और कुछ होगा, चंद्रमा नहीं होगा। तो धर्म का अर्थ स्वभाव है। सोच के देखें इसमें हिंदूपने की क्या बात आई भाई, इसमें बौद्धपने की कि जैनपने की कि ईसाईपने की कि मुस्लिमपने की कि सिखपने की बात क्या आई, क्या लेन देन? अगर अग्नि अनेक प्रकार की होती, ये हिंदुओं की अग्नि है और इसका इस तरह का स्वभाव है, ये बौद्धों की अग्नि है इसका इस तरह का स्वभाव है, ये जैनियों की अग्नि है, ऐसा तो नहीं होता ना। कहाँ अग्नि को कहने जाओगे हिंदू अग्नि है कि बौद्ध अग्नि है कि जैन अग्नि है, और वो जो जलाने का उसका स्वभाव है उसको कहाँ कहने जाओगे ये हिंदू स्वभाव है कि बौद्ध स्वभाव है कि जैन स्वभाव है? तो हिंदू धर्म कैसे हुआ, बौद्ध धर्म कैसे हुआ, जैन धर्म कैसे हुआ? स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। कुदरत पक्षपात नहीं करती, अपना स्वभाव नहीं बदलती, धर्म नहीं बदलती। भूल से भी किसी ने अग्नि पर हाथ रख दिया, जलाएगी वो इस बात को नहीं देखेगी कि जिसने अग्नि पर हम पर हाथ रखा है वो अपने आप को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि क्षत्रिय कहता है कि वैश्य कहता है कि शूद्र कहता है कि अपने आप को नेपाली कहता है कि नेवारी कहता है कि भारतीय कहता है कि अमेरिकन कहता है, अरे कुछ भी नाम से पुकारे ना, आग पर हाथ रखा है ना, जलाएगी। ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है भाई। ठीक इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाएगा, क्रोध जगाए, द्वेष जगाए, दुर्भावना जगाए, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो जलाएगा ही। वो इस बात को नहीं देखेगा कि ये आदमी जो क्रोध जगा रहा है वो इस वेशभूषा वाला है कि उस वेशभूषा वाला है। वो इस बात को नहीं देखेगा कि ये आदमी ऐसे पर्व त्यौहार मनाता है कि वैसे पर्व त्यौहार मनाता है, कि वो आदमी ऐसी दार्शनिक मान्यता मानता है कि वैसी दार्शनिक मान्यता मानता, कुछ नहीं देखेगा। तूने विकार जगाया ना, तत्काल दंड मिलेगा। इसी को धर्म कहते हैं। इसीलिए कहा धर्म सार्वजनीन होता है, सार्वजनीन होता है, सब पर लागू होता है, इसके कानून से कोई बचकर नहीं निकल सकता। अपने को हजार इस कर्मकांड में उलझाए रखे कि उस कर्मकांड में उलझाए रखे, अपने आप को हजार इस दार्शनिक मान्यता में उलझाए रखे कि उस दार्शनिक मान्यता में उलझाए रखे, अपने आप को हजार इस संप्रदाय के बारे में बांधे रखे या उस संप्रदाय के बारे में बांधे रखे, धर्म किसी का लिहाज नहीं करेगा। मन को मैला करोगे तुरंत दंड मिलेगा, अब भी व्याकुल हो जाओगे, दुनिया की कोई शक्ति बचाने वाली नहीं, बचा ही नहीं सकती। और मन को निर्मल करोगे, उसे सद्गुणों से भरोगे, तुरंत पुरस्कार मिलेगा। जैसे ही मन निर्मल हुआ, मैत्री करुणा सद्भावना से भरा, इतना आनंद मालूम होगा, इतना रस मालूम होगा, इतना सुख, इतनी शांति मालूम होगी। ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है। वो इस बात को नहीं देखेगा, ये नियम ये धर्म इस बात को नहीं देखेगा कि अपने मन को निर्मल करके सद्गुणों से भरने वाला ये व्यक्ति अपने आप को किस नाम से पुकारता है, अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है, ये आदमी किस तरह के कर्मकांड करता है, इस तरह के करता है कि उस तरह के करता है, इस आदमी का रहन सहन कैसा है, इस आदमी की बोली भाषा कैसी है, इस आदमी का चेहरा मोहरा कैसा, कुछ नहीं देखेगा। चित्त को निर्मल किया है ना और सद्गुणों से भरा है ना, तुरंत पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। ये कुदरत के बंधे बनाए नियम है जो सब पर लागू होते हैं, इसीलिए धर्म को सार्वजनीन कहते हैं। अगर मेरे मन में क्रोध जागता है और अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं और इसलिए मुझे दंड नहीं मिलता, मेरे मन में क्रोध जागता है और मैं अपने आप को बौद्ध कहता हूं इसलिए मुझे दंड नहीं मिलता, या मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं मुझे दंड नहीं मिलता, अगर ऐसा होता तब तो अलग अलग धर्म होते भाई। हिंदू धर्म में क्रोध जगाओ तो भी दंड नहीं मिलेगा, अथवा बौद्ध धर्म में क्रोध जगाओ तो भी दंड नहीं मिलेगा, अथवा जैन धर्म में क्रोध जगाओ तो भी दंड, ऐसा नहीं होता ना। हम जरा सोच के देखें, भूल गए। धर्म को उसके सही रूप में सही अर्थ में समझने की जैसे शक्ति ही खो दी, उस ओर ध्यान ही हमारा नहीं जाता। संप्रदाय को धर्म मान लिया, एक ऐसा समाज है, ऐसा एक संप्रदाय है, मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, मनुष्यों का एक ऐसा संगठन है, होने चाहिए, उनका कोई दोष नहीं है। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अगर लोग एकत्र होते हैं या अपने अपने पर्व त्यौहार मनाने के लोग एकत्र होते हैं, अपने अपने सामाजिक कार्य पूरा करने के लिए एकत्र होते हैं, क्या दोष की बात है, बशर्ते कि किसी दूसरे समाज वाले का मन दुखाने का कोई काम नहीं करे। तो रहे, अलग अलग समाज है, अलग अलग उनका रहन सहन है, अलग अलग उनका खान पान है, अलग अलग उनके व्रत त्यौहार हैं, रहे, क्या बुरी बात है। लेकिन हम जैसे ही उसे धर्म कहने लगे, वैसे ही खतरे की घंटी बज गई। अब जैसे ही उसे हिंदू धर्म कह दिया तो अपने आप को अलग समझने लगा, मेरा हिंदू धर्म बस यही महान है। जैसे उसे बौद्ध धर्म कह दिया, मेरा बौद्ध धर्म बस यही महान है, कि मेरा इस्लाम धर्म यही महान है, मेरा सिख धर्म यही महान है, बाकी सारे गए गुजरे हैं। तो भाई धर्म कहाँ रहा। एक आदमी बावलेपन में कहता है, बावलापन ही है और क्या है, सोचना समझना भूल गए हम तो अपनी ये दशा बना ली, मुझे अपना धर्म बचाना है, कहता है मुझे अपना धर्म बचाना है, अपना धर्म बचाना है, इसलिए उस धर्म को नष्ट करना पड़ेगा, वो धर्म अगर बढ़ गया तो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, इसलिए मुझे अपने धर्म को बचाने के लिए उस धर्म को नष्ट करना पड़ेगा। कहाँ उलझ गया रे, तो किसी के मंदिर तोड़ेगा और समझेगा कि मैंने अपना धर्म बचा लिया, तो किसी की मस्जिद तोड़ेगा और कहेगा मेरा धर्म बचा लिया, किसी गुरुद्वारे को फूंकेगा और कहेगा मैंने धर्म बचा लिया, किसी गिरजाघर को तोड़ेगा कहेगा धर्म बचा लिया। अरे कहाँ पागल हो गए, कहाँ उलझ गए, तेरा धर्म तो उसी समय खतरे में पड़ गया। कहता हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, अरे तेरा धर्म उसी समय खतरे में पड़ गया जबकि तूने अपने मन में विकार जगा लिया, क्रोध का विकार जगाया कि द्वेष का विकार जगाया कि दुर्भावना का विकार जगाया, खतरे में पड़ गया तू। कितना बड़ा खतरा अपने लिए मोल ले रहा है, बचा अपने आप को, धर्म की रक्षा करने आ गए तो धर्म हमारी रक्षा करने लगा। धर्मो रक्षति रक्षित है, हमने धर्म की रक्षा की, धर्म हमारी रक्षा करने लगा। धम्मो हवे रक्षते धम्मचारी, हम धर्म का आचरण, धर्म का जीवन जीने लगे, धर्म हमारी रक्षा करने लगा। कैसे करने लगा समझना चाहिए ना, हमने धर्म की कैसे रक्षा की, हमने अपने चित्त में दूषित चित्त वृत्तियां आने ही नहीं दी, हमने अपने चित्त को निर्मल रखा, उसमें क्रोध नहीं आने दिया, उसमें द्वेष नहीं आने दिया, उसमें दुर्भावना नहीं आने दी, किसी प्रकार का विकार नहीं आने दिया, तो हमारा चित्त निर्मल रहा, निर्विकार रहा, हमारी रक्षा हो गई। सारे दंडों से हमारी रक्षा हो गई, हमें कोई दंड नहीं दे सकता, हमें कोई व्याकुल नहीं बना सकता, दुनिया की कोई शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती। भीतर ही भीतर ऐसा आनंद का जीवन जिएंगे, भीतर ही भीतर ऐसी सुख शांति का जीवन जिएंगे, हम सुरक्षित हो गए ना। और जहां हमने रक्षा करनी छोड़ दी, धर्म की रक्षा नहीं की, माने अपने चित्त को दूषित विकारों से विकृत कर लिया, तो धर्म की रक्षा नहीं हुई। और अगर हमने अपने चित्त को दूषित विकारों से विकृत नहीं होने दिया, धर्म की रक्षा हो गई, धर्म की रक्षा हो गई, बड़ी शांति मिलने लगी। धर्म की रक्षा नहीं हुई, बहुत अशांत हो गए। इतनी सीधी सी बात, और कहाँ उलझ गए, कहाँ भटक गए, अपने भी हानि करने लगे, औरों की भी हानि करने लगे। जब आदमी अपने भीतर विकार जगाता है, क्रोध जगाता है, तो सबसे पहले तो उसका दंड स्वयं भुगतता है। क्रोध जगाते ही व्याकुल हो जाएगा, और अब वो व्याकुलता बांटनी शुरू कर देगा। जैसे ही क्रोध जगाएगा, सारे वातावरण को तनाव से भर देगा, व्याकुलता से भर देगा। उस समय जो संपर्क में आएगा, वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा। स्वयं भी व्याकुल हुआ, औरों को भी व्याकुल किया, तो जीना नहीं आया ना, जीने की कला नहीं आई ना। अपने यहां धर्म कहते थे जीवन जीने की कला को, कैसे मैं खुद भी भीतर सुख शांति का जीवन जीऊं, बस सुख शांति ही सुख शांति, और कैसे औरों के लिए भी सुख शांति का ही निर्माण करूं, सारा वातावरण सुख शांति से भर जाए, जो मेरे संपर्क में आए उसे बड़ी शांति मालूम होने लगे, बड़ा सुख मालूम होने लगे। ये धर्म है, ये एक हिंदू को भी ऐसा धारण करना चाहिए, एक मुसलमान को भी, एक जैन को भी, एक बौद्ध को भी, एक ईसाई को भी, एक सिख को भी धर्म धारण करना चाहिए, ताकि सुख शांति का जीवन जीऊं, औरों के लिए सुख शांति निर्माण करूं, स्वयं भी व्याकुल हूं, औरों को भी व्याकुल करूं, तो मुझे जीना कहाँ आया, मुझे जीने की कला कहाँ आई, मेरे में धर्म कहाँ जागा। अग्नि जिस पात्र में जलाई जाए तो पहले वो पात्र जलेगा, और फिर उस अग्नि का ताप सारे वातावरण में फैलेगा, उस अग्नि की लपेट में जो आ गया वो जलेगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। ठीक इसी प्रकार मैंने भीतर क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, तो इस पात्र में ये द्वेष जागा, क्रोध जागा, ये अग्नि इस पात्र में जागी, मुझे जलाने लगेगी, स्वयं जलूंगा, सारे वातावरण को उस ताप से संतापित कर दूंगा, जो मेरे संपर्क में आएगा उसे जलाऊंगा। भाई बंधे बंधाए नियम है, प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं, रित के बंधे बंधाए नियम हैं। जो आदमी इन नियमों को जितनी जल्दी समझ लेता है, और समझ करके अपने को उन नियमों के अनुसार जीवन जीने में अपना मानस ढालने लग जाता है, वो व्यक्ति धर्म के रास्ते चल पड़ा। अब अपने को हिंदू कहे हिंदू कहे, बौद्ध कहे बौद्ध कहे, जैन कहे जैन कहे, सिख कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी धर्म के रास्ते चलने लगा, क्योंकि सुख शांति के रास्ते चलने लगा, अपने लिए भी सुख शांति, औरों के लिए भी सुख शांति। और जब तक ये कानून को समझा ही नहीं, इस विश्व के विधान को समझा ही नहीं, तो धारण कैसे करेगा, धारण करने की जरूरत नहीं समझेगा। क्योंकि वो किसी संप्रदाय की के कर्म कांड को ही धर्म माने चल रहा है। मैंने इस मंदिर में जाके पूजा कर ली, उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली, उस गुरुद्वारे में जाके पाठ कर लिया, उस गिरजाघर में जाके प्रार्थना कर ली, हो गया ना, मेरा काम हो गया ना। अब चाहे दिन भर चाहे जैसे करूं, मन को चाहे जैसा बिगाड़ूं, जब तक इस अंधेरे में रहेगा तब तक धर्म के रास्ते कैसे चलेगा। धर्म को इन सारी बातों से अलग करें। मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कोई दोष की बात नहीं, पर जांचता रहे कि ये जो काम कर रहा हूँ इससे मेरा मन निर्मल हो रहा है कि नहीं, मेरे विकार दूर हो रहे हैं कि नहीं। अगर विकार दूर हो रहे हैं तो ठीक, मैं धर्म में पक रहा हूँ। मेरे विकार दूर होते नहीं, मुझे गुस्सा उतना ही आता जितना पहले आता था, मेरे में वासना उतनी जागती जितनी पहले जागती थी, मेरे में अहंकार उतना ही जागता है जितना पहले जागता था, बल्कि ज़्यादा जागने लगा। तो ये धर्म कैसे हुआ भाई? ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका धर्म से क्या लेन देन, क्या संबंध इसका धर्म से? यूँ जिस दिन समझ में आने लग जाएगा उस दिन आदमी सचमुच धर्म के रास्ते चलने लगेगा, अन्यथा ये मनुष्य का सा जीवन बड़ा कीमती जीवन है। क्यों कीमती जीवन है? इस प्रकृति ने, या कहें इस कुदरत ने, या कहें इस निसर्ग ने, या कहें इस परमात्मा ने, इस अल्लाह मियाँ ने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी है जो दूसरे किसी प्राणी को नहीं है। मनुष्य को ऐसी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर अपने चित्त की अवस्था का दर्शन कर सकता है। इसी को अपने यहाँ सत्य दर्शन कहा, इसी को अपने यहाँ सम्यक दर्शन कहा, इसी को अपने यहाँ सत्य दर्शन माने धर्म दर्शन कहा कि भीतर क्या अवस्था है, माने मेरे चित्त की क्या अवस्था है। देख विकार जागा ना, और देख व्याकुल होने लगा ना, झट पांव पीछे हटा लेगा क्योंकि उसको देखना आ गया। इसी को पुरानी भाषा में विपश्यना कहते थे। विशेषे न पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है, साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, भोगता भाव से उसमें लोट पलोट नहीं लगाता। अंदर दुख आया और दुख में लोट पलोट लगाने लगा तो विपश्यना नहीं हुई, देखना नहीं आया, साक्षी भाव नहीं आया, तटस्थ भाव नहीं आया। भीतर कोई आनंद आने लगा उसमें लोट पलोट लगाने लगा, विपश्यना नहीं हुई, साक्षी भाव नहीं आया, तटस्थ भाव नहीं आया। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानता है। इस क्षण की ये सच्चाई है, इस क्षण की ये सच्चाई है, मेरा मन इस समय मैला हुआ है, और मैला हुआ है तो देख मैं व्याकुल हो गया हूँ। मुझे व्याकुलता अच्छी नहीं लगती, किसको अच्छी लगेगी व्याकुलता? मुझे व्याकुलता से दूर होना है, दूर होना है तो इस विकार से दूर होना है। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम एक पक्षी नहीं कर सकता, ये काम एक सरीसृप नहीं कर सकता, ये काम एक कीट पतंग नहीं कर सकता, ये काम एक प्रेत प्राणी नहीं कर सकता, ये काम एक मनुष्य कर सकता है। इतने बड़ी शक्ति दी है हमें प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, चाहे सो नाम लो, इतनी बड़ी शक्ति दी है कि हम आत्ममुखी हो सकते हैं, हम स्वयंमुखी हो सकते हैं, हम सत्यमुखी हो सकते हैं और अपने विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। भीतर देखते नहीं इसलिए हमें होश नहीं रहता कि कुदरत क्या चाहती है। भीतर जो जो सच्चाई चल रही है जिस जिस क्षण उसे देखना आ जाए तो होश आ जाए। अपने यहाँ के संतों ने यही बात कही, जिन्होंने देख लिया अपने भीतर वो यही बात कहता है कि सच्चिया राहु विये किम कूड़े तुट ते पाड़, ओ हुकुम रजाई चलना, ओ नानक लिखिया नाल। किम सचियारा हुए, अपने यहाँ एक शब्द चलता है दुखियारा। दुखियारा माने ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुख का नामो निशान नहीं। अपने यहाँ एक शब्द चलता है सुखियारा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुख का नामो निशान नहीं। इस संत ने एक नया शब्द दिया भाषा को, सचियारा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास झूठ का नामो निशान नहीं। ये वाणी की झूठ की बात नहीं है कि वो हर कदम सच्चाई के साथ चलता है, सच्चाई के सहारे चलते 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 सच्चियारा बनता है। तो अपने भीतर क्या सच्चाई प्रकट हुई उसे देखता है, उस पर कोई मिथ्या आरोपण नहीं करता। हमारी ये दार्शनिक मान्यता अब उसका लेप लगाने लगे, हमारी ये दार्शनिक मान्यता उसका लेप लगाने लगे, तो सच्चियारा नहीं हुआ, कल्पनाएं कर रहा है। तो किम सच्चियारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पाल, झूठ की जितनी परतें हैं सब दूर कर दे और जो जो घटना घट रही है उसे देखता चला जाए, तो सारा कुदरत का रहस्य खुल जाएगा। कुदरत का क्या कानून है ये समझ में आने लगेगा। तो हुकुम रजाई चलना, तो जीना आ जाएगा। अरे उसका क्या हुक्म है, माने उस कुदरत का, प्रकृति का, निसर्ग का, रित का, या परमात्मा का, या अल्लाह मियां का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, वो क्या चाहता है। वो जैसा चाहता है, उसका जैसा हुक्म है, बस वैसे ही चलना है। हुकुम रजाई चलना, और ये संत जानता है कि ये हुकुम रजाई, ये कुदरत का कानून, ये विश्व का विधान, ये धर्म, सर्वव्यापी धर्म किसी पुस्तक में पढ़ने से नहीं मिलेगा, किसी गुरु महाराज के प्रवचन जैसे अब इकट्ठे हुए और प्रवचन सुनने से नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा, केवल चिंतन मनन कर लेने से भी नहीं मिलेगा, जरा सा भी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, वो नानक लिखिया नाले, अपने साथ भीतर लिखा हुआ है, चलते जाओ एक एक कदम, एक एक कदम इस सच्चाई को देखते हुए चलो। सारा कुदरत का कानून अपने भीतर लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ मालूम होने लगेगा, और साफ साफ मालूम होने लगेगा तो उसके मुताबिक चलना आ जाएगा। तो हुकुम रजाई चलना, अरे सुखी हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। एक आदमी भूल से भी, अपनी नादानी से भी, अपने अज्ञान से भी जलती हुए आग के अंगारों पर हाथ धर देता है, हाथ जलेगा, हाथ खींचता है, जलना अच्छा नहीं लगता। फिर कभी भूल से हाथ रख दिया, हाथ जलता है, फिर हाथ खींचता है, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है ये आग है, ये जलाती है, ना भाई ना, इसको नहीं छूना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, उससे दूर रहने लगता है। ऐसा क्यों होता है, सच्चाई उसकी अनुभूति पर उतरी है, उसने स्वयं आग पर हाथ रख के देख लिया ये जलाती है, इसका स्वभाव जलाना है। यूं दो बार देखा कि चार बार देखा, बस अब उधर हाथ नहीं रखेगा। बिल्कुल यही बात धर्म की है, जो अग्नि का धर्म है वही हमारे मन के विकारों का धर्म है। हमको ये विद्या आ जाए कि अंतर्मुखी होकर के इस धर्म का दर्शन करना सीख लें, तो देखेंगे विकार जागा और जलने लगे ना, क्रोध जागा और जलने लगे ना, व्याकुल होने लगे ना। अब क्योंकि अनुभव नहीं होता, ये विद्या अंदर देखने वाली विद्या नहीं आती, तो पता ही नहीं लगता मेरे भीतर क्या होने लगा। एक उदाहरण से समझें, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया और आया मुझे क्रोध जोर से, मैंने बदले में गालियां दी, मैंने भी उसका अपमान किया। जिस वक्त मुझे क्रोध आ रहा है, मैं भी गालियां बक रहा हूं, मैं भी उसका अपमान कर रहा हूं, उस समय मेरे मानस में वही आदमी घूमता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया। अरे वो जो व्यक्ति है वो तो एक बार गाली दे करके चला भी गया, वो घटना घट भी गई, मैं बार बार याद करता हूं, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, और जितनी बार याद करता हूं उतनी बार क्रोध जगाता हूं, जले जा रहा हूं। उसने तो एक बार गाली दी, मुझको व्याकुल बनाने के लिए गाली दी, मेरा दुश्मन है, मुझे दुखी देखना चाहता है, उसने गाली दी, मेरा अपमान किया, एक बार मुझको दुखी बनाने का काम किया, मैं सहस्त्रों बार दुखी हुए जा रहा हूं, मैं सहस्त्रों बार व्याकुल हुए जा रहा हूं, घंटों व्याकुल रहता हूं, कभी महीनों व्याकुल रहता हूं, कहता हूं कि ऐसा अपमान किया उसने मेरा, जन्म भर नहीं भूलूंगा। मत भूल भाई, सारे जन्म भर तू आग में जलेगा, कर क्या रहा है, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, मत भूलना, 7 जन्म नरक में सड़ेगा, जलेगा, कर क्या रहा है, अपनी ओर नहीं देखता ना। अरे जैसे ही मैंने क्रोध जगाया तो अपने पर वार करने लगा, अपने पर आक्रमण करने लगा। उसकी हानि तो होगी कि नहीं होगी हम नहीं जानते, और होगी तो भी बाद में होगी, मेरी हानि तो अभी होने लगी। ये बात उपदेशों से कैसे समझ में आए भाई? आ भी गई तो जैसे इस धर्म सभा के बाहर जाएंगे वैसे के वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो लगा आज धर्म की बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात समझ में आई, फर्क क्या पड़ा? और जिस दिन देखना आ जाएगा, अपने भीतर देखना आ जाएगा, एक विकार जगा और मैं बाहर की घटना जो हो जैसी भी हो मैंने तो विकार जगाया ना, विकार जगाते ही देख व्याकुल हुआ यूं समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे विकारों से अपने आप दूर होने लगेगा। जैसे आग पर हाथ धरना मेरे लिए बहुत अशांति पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है, एक बार जाना, दो बार जाना, दस बार जाना, अब नहीं बाबा, ऐसे ही भीतर से अनुभूतियों से जानने लगेगा, विकारों से मुक्त होने लगेगा, किसी पर एहसान नहीं कर रहा, अपने आप पर एहसान करने लगेगा, अपना भला करने लगेगा, अपना मंगल करने लगेगा, स्वस्थ मुक्ति के रास्ते पड़ जाएगा, ऐसा व्यक्ति धर्मवान हो गया। अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, क्या फर्क पड़ गया? अपने को हिंदू कहलाने वाला व्यक्ति बहुत धार्मिक भी हो सकता है और अपने को हिंदू कहलाने वाला व्यक्ति बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। अपने को बौद्ध कहने वाला व्यक्ति बहुत धार्मिक भी हो सकता है, बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। जैन कहने वाला, मुस्लिम कहने वाला, ईसाई कहने वाला, सिख कहने वाला बहुत धार्मिक भी हो सकता है, बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। इन नामों में क्या पड़ा है? हम कहाँ उलझ गए? धर्म को उसके सही रूप में क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? उसका अपना अस्तित्व है, एक महान अस्तित्व है, वो कुदरत का कानून जो सर्वव्यापी है, जो सब पर लागू होता है, अणु अणु जिसे धारण किए हुए है, जो अणु अणु को धारण किए हुए, सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, उसको अपने यहाँ धर्म कहते थे। अब इस धर्म का अनुभव कैसे हो अपने भीतर, और उसका अनुभव करके हम कैसे सचमुच धर्म के रास्ते चलने लगे कदम कदम, आगामी चार दिनों में इस पर चर्चा करेंगे। आज तो ये भूमिका केवल इतना भर तो समझें कि सचमुच धर्म क्या होता है। हमने कहाँ संप्रदाय को धर्म मान लिया, किसी समाज को धर्म मान लिया, मनुष्यों के किसी समूह को धर्म मान लिया, किसी कर्मकांड को धर्म मान लिया, किसी दार्शनिक मान्यता को धर्म मान लिया। अरे उससे बाहर निकलें और सचमुच धर्म क्या है इसे समझते हुए उसे धारण करने का रास्ता ढूंढें। ये तड़प जब भीतर से उठेगी कि धर्म सचमुच धारण करने का कोई रास्ता मिले मुझे, तो सचमुच रास्ता मिलेगा और खूब प्रगति होगी। आज की इस धर्म सभा में जो जो आए हैं, मुझे बड़ा विश्वास है उन सब के भीतर धर्म का बीज है। किसी न किसी जन्म में धर्म का बीज, शुद्ध धर्म का बीज, हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, शुद्ध धर्म का बीज कभी मिला, इसलिए खींचे हुए चले आए। अन्यथा न जाने किसी सिनेमा में होते कि नाटक में होती कि कहीं और तमाशे में होते, आए यहाँ पर तो धर्म का बीज है। लेकिन भाई ये धर्म का बीज केवल बीज ही बना न रह जाए, ये अंकुरित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसमें फूल उगने चाहिए, इसमें फल आने चाहिए, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, मंगल से भर जाएगा। जो जो आज की धर्म सभा में आए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। प्रश्न आया, आपका आशीर्वाद कल्याण के लिए चित्त और शरीर के संबंध श्री कृष्ण ही हैं, शरीर और चित्त के छुटकारा पाने के लिए आधा आँख खोलकर अपनी बांसिका को देखो गीता में कहा गया है, और विपश्यना में क्या फर्क है? सिस्टम तो वही है कि भिन्न भिन्न है? आगामी चार दिनों में समझेंगे इस बात को। किसी भी मार्ग किसी भी विधि की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर विधि के अपने अपने लाभ होते हैं, पर उनका जो फर्क है वो समझ लेना चाहिए। आज उस चर्चा में न पढ़ करके तीसरे दिन जब विपश्यना को कैसे अपने अभ्यास में उतारें इस पर चर्चा होगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तब इसका स्पष्टीकरण होगा। तो रखा है, अच्छी बात। विपश्यना शब्द बौद्ध ग्रंथ माठ ले यो हुनाले ये खात्री विश्व धर्म भयो। ना भाई ना, धर्म बौद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध ने ये सच्चाई जरूर ढूंढ निकाली कि भीतर से ये कुदरत का कानून कैसे काम करता है। इसको उन्होंने स्वयं देखा और लोगों को बांटा। तो बांटा तो धर्म बांटा, बौद्ध धर्म नहीं बांटा। सारे जीवन भर 45 वर्षों तक लोगों को उपदेश देते रहे, धर्म का उपदेश देते रहे। सारी बुद्धवाणी में कहीं बौद्ध धर्म ऐसा शब्द है ही नहीं। और जो लोग उनके बताए रास्ते पर चलते थे वो अपने को बौद्ध नहीं कहते थे। सारी बुद्धवाणी में बौद्ध शब्द नहीं है। जो लोग रास्ते पर चलते थे वो कहलाते थे धम्मिको, माने धार्मिक है, धम्मठो माने धर्मिष्ठ है, धम्मी माने धर्मी है, धम्मचारी धर्म विहारी, यही 5 शब्द मिलते हैं। तो उसे बौद्ध कहने की कोशिश ना करो, उससे उलझ जाओगे। धर्म कहो, और धर्म सबका होता है। और सिद्धार्थ गौतम ही अकेला बुद्ध नहीं हुआ, उसके पहले न जाने कितने बुद्ध हुए जिनको बोधि प्राप्त हुई, और आगे भी न जाने कितने बुद्ध होने वाले हैं। किसी की मोनोपोली नहीं हुआ करती। सच्चाई का जो दर्शन कर ले और मुक्त हो जाए वो बुद्ध हो गया। तो धर्म का ही कोई महत्व देना है और किसी बात को नहीं। स्वस्थ मुझे होता है तो मुझे अस्वस्थ भी होता होगा। यह मुक्ति भी स्वस्थ और अस्वस्थ कैसे परिभाषित करेंगे? जब जब हम अस्वस्थ हैं तब तब मुक्त नहीं हैं। अस्वस्थ हैं इसका मतलब भीतर विकार जगाया है, तो विकारों के बंधन में बंधने लगे। जो विकारों के बंधन में बंधा है वो मुक्त कैसे हुआ? और स्वस्थ हुआ माने स्वयं स्थित हो गया, वो स्वस्थ हो गया। स्वयं स्थित हुआ, अपने बारे में जो सच्चाई है उस सच्चाई में स्थित हुआ कि निर्मल होने लगा, तो मुक्त होने लगा। यही स्वस्थ और अस्वस्थ की बात समझनी चाहिए। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का यही अर्थ है कि हम किस प्रकार अपने भीतर के विकारों को निकाल करके, भीतर के बंधनों को खोल करके निर्मल हो जाएं, मुक्त हो जाएं। जो काम दूसरे नहीं कर सकते, दूसरे प्राणी, वो हम ही कर सकते हैं, और ये करके हम अपने जीवन को सार्थक बना लें। यही अर्थ है मनुष्य जीवन का। किसी संकट की घड़ी में झूठ बोल के अपना बचाव होते ही मन को बड़ी शांति मिलती है, तो क्या ये कुशल कर्म है? नहीं भाई नहीं। आगे जब चलेंगे तब देखेंगे कि इस मानस के अनेक स्तर हैं। पश्चिमी भाषा में जिसे आजकल कॉन्शियस माइंड कहते हैं, हाफ कॉन्शियस कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं, उन दिनों के हमारे महापुरुषों ने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए। ऊपर वाले छोटा सा चित्त है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, छोटा सा चित्त है, उसे परित चित्त का, परिमित चित्त है। बहुत मोटी दीवार पड़ी है हमारे कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो ऊपर ऊपर से लगता है कि झूठ बोल करके मुझे कुछ मिल गया, बड़ी खुशी हुई, कहाँ खुशी हुई? केवल ऊपर वाले छोटे से चित्त में खुशी हुई, बाकी सारा का सारा चित्त भीतर का व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। यही विपश्यना कराएगी कि भीतर वाले चित्त को देखना सीख जाओगे। हजारों वर्षों से बहुसंख्यक लोग धर्म को संप्रदाय ही मानते आए हैं। इसका कारण राजनीति दल के स्वार्थ ही हैं। राजनीतिक स्वार्थों से कैसे लोगों को संप्रदाय से मुक्त करें? हाँ, अब राजनीतिक कारण होने लगे। एक समय था जब पुरोहितों का कारण होता था। सब अपने अपने बाड़े में लोगों को बांधे रखने के लिए इस संप्रदाय को धर्म कहें, कोई उस संप्रदाय को धर्म कहें, ये चलता था। अब दुर्भाग्य से राजनीति ने इसको ले लिया और अपना लाभ उठाने लगे। हानि करती है, नुकसान ही करती है, अपना लाभ अब नहीं होता। बचने का एक ही उपाय है कि लोगों को सचमुच धर्म क्या है इसकी जानकारी हो जाए, और सचमुच धर्म कैसे धारण किया जाए इसे जान करके धारण करने लगे, तो फिर संप्रदाय से अपने आप दूर होंगे। नाम भले अपना हिंदू रखेंगे, बौद्ध रखेंगे, जैन रखेंगे, कोई दोष की बात नहीं। वैसे अपने पर्व उत्सव भी मनाएंगे, कोई दोष की बात नहीं, पर अपने मन को निर्मल करने के काम में लग जाएंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। कर्मकांडों को विधान में संकुचित हूँ, आशा हूँ संकुचित विचार से हटने का कोई उपाय। यही उपाय है। अब तो बुद्धि कहती है तुम्हारी, क्योंकि बार बार सुना है इन कर्मकांडों में क्या पड़ा है, कर्मकांडों में क्या पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि कहती है कर्मकांडों में क्या पड़ा है। लेकिन जिस दिन अनुभूति पर बात उतर जाएगी, तुम कर्मकांड किए जा रहे हो और भीतर अपने को जांच रहे हो, अंतर्मन की गहराइयों तक उससे कोई लाभ प्राप्त हुआ, उससे विकार दूर हुए, अगर नहीं हुए तो निकम्मे हैं, ऐसा अनुभूतियों से जानोगे तो उसके बाहर निकलना आसान हो जाएगा। जो आदमी बेहोश है उसको कैसे पता चले कि वह विधान के विपरीत चल रहा है? बस बड़ा सुंदर प्रश्न है। जब बेहोश हैं तभी तो विकार जगा रहे हैं ना, होश नहीं है हमें कि हम भीतर क्या हो रहा है। विपश्यना ये होश जगाएगी, अपने भीतर देखते देखते ऐसा होश जागेगा, प्रतिक्षण होश है, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर अवस्था में भीतर होश है, और होश है तो गलती होगी नहीं, विकार जागेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे। धर्म की परिभाषा, ऐसे भी धर्म एक ही है, बौद्ध और अबौद्ध में क्या भेद है? धर्म तो एक ही है, धर्म दो नहीं हो सकते। संप्रदाय भिन्न भिन्न होंगे, समाज भिन्न भिन्न होगा, संगठन भिन्न भिन्न होंगे, जमात भिन्न भिन्न होगी, धर्म तो एक ही होगा। जो ये बात जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी अपने कल्याण के रास्ते पड़ जाएगा। When I have gross sensation in spine or brain, I get nervous and my thinking becomes obsessive. Please suggest. I do not know whether you have taken a vipassana course or not. If you have not taken, better take a course of vipassana and understand how to deal with this problem. Otherwise, if you have taken a course, whenever you find there is a gross sensation, see that you don't generate aversion towards it. Accept the reality of this moment. It is so. At this moment, there is gross sensation, but it is not permanent. Let me see how long it lasts. Let me see how long it lasts. Your mind becomes more and more equanimous, and you are coming out of the obsession. You are coming out of all the impurities. Please suggest some method of change my habit of wrong thinking. It is obvious that an affirmation practice goes against vipassana. Well, the only way to come out of it is to experience it and learn how to observe it objectively. If you experience it and start rolling in it, then you can't come out of it. So first thing vipassana will do, it will help you to observe the reality, to experience the reality, and then observe it objectively, and you will be coming out of it. Do you allow a vipassana student to visit other saints like lamas in Kathmandu? A saint is a saint. Whether he's a lama or whether he's anybody else, what makes the difference? Anyone who has purified the mind is a saintly person. One should go near every saintly person and get good vibration from this person, provided it helps you to go inside yourself and purify your mind. If it just becomes a blind faith, blind devotion, it won't help you. The main aim should be meeting a saint is to get the technique, to get the ability to observe the reality within oneself. And this can be done going to any saint, anywhere. धर्म के बारे में आपने जो कहा उसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन जो आदमी अपने न्यूनतम आपूर्ति के लिए काम कर रहा हो उसके लिए धर्म क्या है, क्या आप खुलासा कर सकते हैं? हमें गृहस्थ होने के नाते, और अगर सन्यासी है तो सन्यासी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। जीवन की जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए हम कैसे धर्म के रास्ते चलें? आदमी बुद्धि से खूब समझता है कि मुझको इस तरह का जीवन जीना चाहिए, लेकिन नहीं जी पाता। नहीं जी पाता तो विपश्यना मदद करेगी। कैसे जिए? तो पहले कैसे मन को वश में करे, फिर मन को कैसे निर्मल करे, इसीलिए सारी साधना करनी होती है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, अपने मानस की एक एक्सरसाइज है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं शरीर को सबल और स्वस्थ बनाने के लिए, ऐसे मन की एक्सरसाइज है मन को सबल और स्वस्थ बनाने के लिए। इच्छानुकूल चित्तवृत्ति कैसे बनाएं? विपश्यना से ही बनेगी, अन्यथा तुम्हारी इच्छाएं हजार होते हुए भी अंतर्मन की गहराइयों में जो स्वभाव का शिकंजा बना लिया उसमें जकड़े हुए हो, वो अंतर्मन का स्वभाव बार बार गलत काम करता चला जाएगा। ऊपर वाला मन कहेगा कि नहीं नहीं करना चाहिए, बुद्धि कहेगी नहीं करना चाहिए, पर वो सुनेगा नहीं क्योंकि वो अंधा है और बड़ा बलवान है। तो इसलिए वो जो अंधा है उसका अंधापन दूर करें, और अंधेपन में उसका जो बल है उसे दुर्बल करें। आप क्यों न, धर्म शांति है, आपको क्या क्रोध आता ही नहीं? भाई इतना क्रोधी व्यक्ति था कितना क्रोधित है ये तो मेरी पत्नी जानेगी, कितना क्रोधित है मेरे बच्चे जानेंगे। दूसरों के सामने मुस्कुराना बड़ा आसान होता है, पर घर में तो सच्चाई आती है ना सामने। इस विद्या ने जो क्रोध निकाला, इसी से आकर्षित हुआ, जैसे ये विद्या ने खींच लिया मुझे। अरे विकारों को दूर करने की बात तो सभी करते हैं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, न जाने गीता का पाठ कितनी बार किया होगा, रोज ही कुछ न कुछ तो करता था, और बार बार भीतर आग भय क्रोधो इत्यादि इत्यादि, पर हो कैसे? उपदेश तो बड़े अच्छे हैं, स्थित प्रज्ञ शका भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, बड़ी अच्छी बात है, पर कैसे हो? विपश्यना ये करना सिखाया, ऐसे हो। बहुत क्रोधी आदमी अगर अपने क्रोध से मुक्त नहीं होता है तो विपश्यना किसी काम की नहीं। वासना में बहुत डूबा रहने वाला व्यक्ति वासना से बाहर नहीं निकलता है तो विपश्यना ने काम नहीं किया। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अहंकार से नहीं छुटकारा पाता है, विपश्यना ने काम नहीं किया। विपश्यना काम करेगी, ऐसी साबुन है जो मन के मैल को धो देगी। साबुन का इस्तेमाल करना सीखें। विपश्यना इस संसार में कब से चल रही है? क्या वेद में भी इसका विश्लेषण है? सचमुच विपश्यना बहुत पुरानी है। जब जब मनुष्य जाति में ऐसे लोग पैदा हुए कि जिनको अंतर्मुखी होकर के बोधि जागी, तो बोधि इसी बात की जागी कि उनको भीतर से सारा कानून सारा धर्म अनुभूतियों पर उतरने लगा। ऐसी बोधि जागी तो अपना भी कल्याण किया और औरों को बांटी, औरों का भी कल्याण किया। चली दो चार पाँच सदियों तक चली, फिर धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया, काम नहीं किया, विद्या लुप्त हो गई। फिर ऐसा कोई व्यक्ति जागा जिसमें बोधि जागी, उसको ज्ञान जागा, अनुभव से जाना, फिर उसने लोक कल्याण किया। ऐसे बार बार होता है। इस समय जो भी साहित्य पुराना से पुराना है वो वेद का साहित्य है, उनमें ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना। ऋग्वेद में विपश्यना की प्रशंसा ही प्रशंसा भरी पड़ी। यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सैनय पार्षदति द्विषः। जो विपश्यना करता है और अच्छी प्रकार करता है वो द्वेष के बाहर चला जाता है। बस केवल उपदेश है ना, कैसे करें ये तो भूल गए। जिस आदमी ने कैसे करें ये खोज निकाला और लोगों को बांटा, फिर भूल गए हम। तो अब आइए भाई, इसका लाभ लो और विपश्यना कैसे करें और कैसे मन के विकारों से छुटकारा पालें, ये स्वयं करके देखना चाहिए। तटस्थ भाव से किसी संवेदना को देखने में विकार कैसे दूर होगा? विकार है क्या? हमारी प्रतिक्रिया का नाम विकार है। अच्छा लगता है हम राग जगाते हैं, राग की प्रतिक्रिया करते हैं। बुरा लगता है हम द्वेष जगाते हैं, द्वेष की प्रतिक्रिया करते हैं। राग की प्रतिक्रिया करें तो व्याकुल हो गए, द्वेष की प्रतिक्रिया करें तो व्याकुल हो गए, और अगर देखना आ गया समता से तो राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया, वो स्वभाव पलटने लगा। वो स्वभाव जो सुखद के प्रति राग पैदा करने वाला था, दुखद के प्रति द्वेष पैदा करने वाला था, वो स्वभाव पलटने लगा तो चित्त निर्मल होने लगा। ये जब करोगे तो बहुत साफ साफ मालूम होगा। यदि सच्चाई माने हिंदू बौद्ध आदि है तो क्या सबके लिए आवश्यक है? सबके लिए आवश्यक है। सच्चाई तो एक ही है। हिंदू भी अपने भीतर देखेगा वही सच्चाई दिखाई देगी, मुसलमान भी अपने भीतर देखेगा वही सच्चाई दिखाई देगी, बौद्ध देखेगा वही सच्चाई दिखाई देगी। हम कल्पना करेंगे तो कल्पना अलग अलग होगी। इसकी दार्शनिक मान्यता ये है और उसी की कल्पना कर रहे हैं तो सच्चाई से दूर है। किसी की मान्यता ये है और कल्पना कर रहे हैं सच्चाई से दूर है। कल्पनाओं को दूर रखेंगे, दार्शनिक मान्यताओं को दूर रखेंगे, जो अनुभव हुआ यथाभूत जो घटना घटी तो सबके लिए एक जैसी होगी। धर्म दो नहीं हुआ करता, एक ही होता है। सच्चाई दो नहीं होती, एक ही होती है। वर्तमान संसार में भी बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक लोग हैं जो संप्रदाय को मानते हैं। क्या हम ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे तो मन में उनके प्रति घृणा जगाएंगे, तो भाई घृणा जगाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे ना। हम उनके प्रति करुणा जगाएंगे। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में अभी उसे जानकारी नहीं है, तो दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। उसके प्रति खूब प्यार प्रकट करेंगे, उसके प्रति घृणा नहीं पैदा करेंगे। सच धर्म क्या विकारों से मुक्ति होने पर ही आती है। विकारों से जैसे जैसे मुक्ति होती है वैसे वैसे सत्य धर्म प्रकट होता है, और सत्य धर्म जैसे जैसे प्रकट होता है विकारों से वैसे वैसे मुक्ति होती है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं। आपने कहा कि विकारों से मुक्ति होने से जीवन मुक्ति मिलती है, क्या आप भी मुक्त हो गए हैं, अर्थात आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, कृपया बताइए। अच्छा प्रश्न है। जिस दिन मुझे विपश्यना मिली और उस दिन की तुलना आज से करता हूँ तो देखता हूँ जरूर मुक्ति मिली। जितने जितने विकारों से छुटकारा हुआ उतनी उतनी तो मुक्ति हुई। जो जो कर्म संस्कार मुझको पुनर्जन्म देने वाले थे उनसे जितना जितना छुटकारा हुआ उतनी उतनी तो मुक्ति मिली। एक समय आएगा कि पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी, तो जितनी मुक्ति मिली उसी में प्रसन्न रह करके बाकी विकारों को दूर करने का काम करते रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आपने धर्म को धारण करना कहा, लेकिन धारण अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। यही तो एक समय था जबकि अच्छे को भी धर्म कहते थे बुरे को भी धर्म कहते थे, फिर धीरे 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 अच्छा धारण करो तो धर्म, बुरा धारण करो तो अधर्म। अब ये विद्या सिखाएगी कि अच्छा ही धारण करें बुरे को दूर करें, ऐसा इस विद्या से करना आ जाएगा। इस सभा में आपको किसी ने गाली दी तो आपके मन को दुख नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, आपको आत्मा को कैसे लगेगा? कोई गाली दे के देखे भाई। एक समय था कि गाली देना तो बहुत दूर, हमारे मन के खिलाफ जरा सा काम हो जाए तो यूं भीतर जलने लगता था और इतना दुखी हो जाता था, लोगों को दुखी करता था, इतना अहंकार जगाता था, भाई उससे मुक्ति मिलेगी तो इसलिए मेरा कल्याण हुआ तो चाहता हूं ऐसा कल्याण औरों का भी हो, मुझे इस मुक्ति से जो सुख शांति मिली चाहता हूं ऐसे सुख शांति औरों को भी मिले, इसीलिए जीवन इसमें लगाया हुआ है। देखो भाई इसका कोई अनुवाद कर दे हमें। स्वभाव धर्म से परमात्मा का क्या संबंध है? जो सत्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है, जो परम सत्य है वो परमेश्वर है, उसे परमात्मा कहें चाहे सो कहें, इन नामों में कुछ नहीं पड़ा। हम सच्चाई का दर्शन कर रहे हैं तो ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, हमने इंद्रियातीत परम सत्य का दर्शन कर लिया तो हमने परम ईश्वर का दर्शन कर लिया। करना चाहिए ना, ऐसा करें नहीं और शब्दों के पीछे लड़ते रहें कि तुम ईश्वर को मानने वाले, हम ईश्वर को नहीं मानने वाले, तुम ईश्वर को नहीं मानने वाले, हम मानने वाले, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दर्शन सचमुच होना चाहिए अपने भीतर। 52 किस्म की चित्तवृत्तियाँ क्या हैं? अगर हमें स्कूल के लिए विद्यार्थी तैयार करने होते तो हम 52 की लिस्ट दे देते और उसको रट रट करके परीक्षा में उत्तर दे के पास हो जाते, ऐसा नहीं होता भाई। अपने भीतर इनका दर्शन करना पड़ता है। 52 चित्तवृत्तियों का दर्शन तो बहुत ऊंचाइयों पे जाके होगा। पहले तो शरीर के मानस के चार मोटे मोटे खंडों का दर्शन होगा, कल परसों इसे समझाएंगे। इज विपश्यना आल्सो नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड सो मैनी एंड सो ऑफ हिंदुइज्म एंड अदर इज्म्स। इफ विपश्यना बिकम्स ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म देन अंडरस्टैंड विपश्यना इज नो विपश्यना। विपश्यना कैन नेवर बी सेक्टेरियन, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल। दैट इज वाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम एवरी सेक्ट, फ्रॉम एवरी कम्युनिटी, फ्रॉम एवरी कंट्री पार्टिसिपेट एंड दे कंटिन्यू टू कॉल देमसेल्स बाय द सेम नेम एज दे वर कॉलिंग देमसेल्स बिफोर। इन विपश्यना वी हैव नाउ ट्रेन्ड अबाउट 250 टीचर्स हु आर टीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। Amongst them, there are Hindus, there are Buddhists, there are Christians, there are Jains, there are Brahmins, there are Shudras, everyone. Dhamma does not discriminate between one and the other. The purity is purity. Anyone of any name can purify the mind and become a saintly person, help oneself and help others. If Dhamma is law of nature, then what is the law of nature? This is what you will understand when you come to a course of Vipassana. When you experience the truth yourself, then you will know, oh, this is the law of nature. Now it will be just an intellectual game, and it is not healthy just to have intellectual pleasures. It is just to give you a guidance and an inspiration that there is something which you can experience yourself, there is something by experiencing which you can get a technique to come out of your misery by getting rid of your impurities. May all of you find time to come out of your misery, to learn this technique, the wonderful technique, the universal technique, and come out of your misery and enjoy real peace, real harmony, real happiness to you all.